इस कॉन्फ्रेंस हॉल में आदरणीय मंजू दीदी जी का सभी ताली बजा करके स्वागत करेंगे। मंजू दीदी 50 साल से इस ज्ञान में चल रहे हैं। शुरू शुरू में सेवा मधुबन से शुरू हुआ था, काफी दिनों तक सालों तक मधुबन में ही अपनी सेवाएं दी हैं। उसके बाद 30 वर्षों से उड़ीसा में ब्रह्मपुर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। अगर मैं चक्रवर्ती कहूँ तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कभी भी पांव एक जगह पर ठहरता नहीं है, सभी जगह घूम घूम कर अपनी सेवाएं देती रहती हैं। जिनके श्वास में बोल में सिर्फ एक ही शब्द होता है कि बनना है तो बाप समान बनना है, आज हम सब मंजू दीदी से सुनेंगे उनका अनुभव। ओम शांति।
ओम शांति। हॉल में आते ही मुझे प्यारे बाप दादा के वो महावाक्य याद आए कि नुमा शाम के समय अंतवाहक शरीर को धारण कर फरिश्ते वतन में विचरण करते हैं, जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे बाबा की याद में होते हैं उन्हें उनसे विशेष आकाश मिलता है, और जो भक्त सच्चे दिल से भक्ति करते हैं उन भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन वतन में या आकाश में अंतवाहक शरीर लेकर विचरण करने वाले, लेकिन उससे पहले संपूर्ण ब्राह्मण बनना अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण एक शब्द में बताओ, संपूर्ण ब्राह्मण किसको कहा जाएगा? एक शब्द, एक सेंटेंस भी नहीं, एक शब्द सुनाएंगे। बाप समान जो हो वो संपूर्ण ब्राह्मण है। संपूर्ण ब्राह्मण किसको कहा जाए? पहली बार जो आए हैं शांति वन में वो हाथ खड़ा करो, जो फर्स्ट टाइम आए हैं। आधा 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 आधा। हमें याद आता है हमेशा हमारी मीठी मम्मा, प्यारे बाबा और बड़ी दीदी और बड़ी दादी, जिनके साथ बहुत नजदीक से जीवन की कुछ अनमोल घड़ियां बिताई हैं। एक शब्द बाबा हमेशा प्रयोग करते, मम्मा हमेशा प्रयोग करते कि संपूर्ण ब्राह्मण वो जो सदा हंस बन करके रहे। हंस भी सफेद होता है, कुछ ग्रहण करता है कुछ छोड़ता है। फरिश्ते भी सफेद होते हैं और ब्राह्मण जीवन भी अंदर बाहर, बाहर वस्त्र सफेद है अंदर मन स्वच्छ है, प्योर है, निर्मल है, बेदाग है। किसी का भी कुछ मन के ऊपर में, किसी भी प्रकार की मन के ऊपर में छाया भी नहीं है। काया तो छोड़ो, छाया भी नहीं है। उसको कहा जाएगा संपूर्ण ब्राह्मण। तो आप सब यहाँ हंस बैठे हो ना, हंस बैठे हो ना, तो हंस की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है सबको मालूम है? सबको मालूम है ना, दो चीज अलग करता है, मोती और पत्थर को अलग करता है, दूध और पानी को अलग करता है, जिसको कहते हैं क्षीर और नीर। उसकी ये विशेषता है, एक ही चोंच में दोनों चीज को अलग कर देता है। हमारे भी संकल्प में प्यारे बाबा की जो इतने समय से, चाहे मैं देख रही थी आधा आधा क्लास, 50-50 है, 50 पुराने आए हुए हैं, 50 पहली बार आए हुए हैं। जो अभी पहली बार आए हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? जब आप सब पहुंच गए हो तो आजकल मार्केट में फास्ट फूड मिलता है ना, उसके ऊपर ज्यादा भीड़ होती है ना, ऐसे आप सभी लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसेट तैयार है, कैसेट सारी तैयार है, वो भी खाली ऑडियो नहीं, वीडियो, आंखों से आप देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो, उसके साथ में प्रैक्टिकल में बाप समान बनी हुई आत्माएं आपके सामने तैयार हैं। तैयार है ना, तैयार है ना। हमारी दादियां क्या हैं, अभी ये बन नहीं रही हैं, ये हमारे और आपके लिए रुकी हुई हैं कि कैसे इन सभी को हम प्रैक्टिकल इस देह में रह करके संपूर्ण बन करके इस जगत में कार्य कर सकते हैं विश्व कल्याण का, वो दिखाने के लिए, हम लोगों को बनाने के लिए दादियां अभी इस धरा पर हैं। नहीं तो ये ऊपर ही रहते हैं, बाबा के पास वतन में ही रहते हैं। यहाँ भी विश्व कल्याण का कार्य, इनके स्वप्न और संकल्प में भी विश्व कल्याण समाया हुआ है। तो अभी हम ये देखें, बाबा जो हम सभी को होली हंस बोलता है, राज हंस बोलता है, बोलता है ना बाबा हम लोगों को, तो हंस की विशेषता जो एक पक्षी बोलो उसके अंदर है, उतनी भी विशेषता हमने अपने में धारण किया है। हंस को कभी कठिनाई नहीं होती, पता नहीं कौन सा पत्थर है, कौन सा हीरा है, कितना पानी है, कितना दूध है, उसे सोचना नहीं पड़ता, वो एक सेकंड में दोनों चीज को अलग कर देता है, उसके पास इतनी बुद्धि है। दूसरा, बाबा पवित्रता के लिए, मन हंस समान बुद्धि के लिए हमेशा मयूर का मिसाल देता है। आज दिन तक श्री कृष्ण के मोर मुकुट में मोर पंख है और किसी का नहीं है, और भारत जो पवित्र देवों की भूमि है, उस भूमि का राष्ट्र पक्षी भी आज तक मयूर है। क्यों? उसने कलयुग के अंत तक अपनी पवित्रता को कायम रखा है। इसलिए मोर और हंस दो इतने अट्रैक्टिव, इतने सुंदर पंछी हैं, ये पशु भी इनको नहीं बोलेंगे ना, भले आकाश में ना उड़े लेकिन उड़ते तो है ना, तो इतने अच्छे हैं ये कि जिन्होंने आज तक हमारे किए हुए संगमयुगी कर्म को अपने जीवन में धारण करके रखा हुआ है। इसलिए पैलेस में मयूर तो जरूर होगा, नहीं होगा? सत्यु की पैलेस की कल्पना करो, आपके पैलेस में क्या होगा? होगा नहीं, होगा नहीं, मोर होगा नहीं होगा। तो आज हम इस विषय पर, फिर तो हमारी आदरणीय दादी जी आएंगे ना, आप सबसे मिलेंगे, आज तो आप सभी को आपका जन्म सिद्ध अधिकार सौगात भी मिलने वाली है, टोली भी मिलने वाली है। थोड़ी सी देर के लिए हम आपस में क्लास नहीं कर रहे, लेन देन करते हैं, ठीक है? लेन देन, कोई भी कहाँ भी किसी की बुद्धि नहीं जाए। बाकी मुझे संकल्प चल रहा है, जो हमारे भाई बहन खड़े हुए हैं, मैं देख रही हूँ धीरे से आकर के, बीच बीच में कहाँ कहाँ कुर्सियाँ खाली दिखाई दे रही है इतनी दूर से मेरे को, जहाँ भी जिसको जिस रीति से भी जगह मिले, नहीं तो बाबा ने तो ये स्टेप भी बहुत अच्छी बना दिए, 84 नहीं होंगी, कम होंगी, लेकिन यहाँ भी बैठ सकते हो आराम से, नहीं तो आज हम इस विषय पर लेन देन करते, आपस में रू रिहान करते हैं, क्लास नहीं, रू रिहान करते हैं कि आखिर हम नेचुरल कैसे हंस बन करके अपना जीवन चलाएं, उसके लिए हम कैसे क्या करें, और हंस बन करके चलने से हमें क्या फायदा है, प्रकृति को क्या फायदा है, हमारे साथी ब्राह्मण परिवार को क्या फायदा है, और जो हमारे बाबा के बच्चे ही हैं सारे, तो जो बाबा को अभी तक नहीं पहचाने हैं, उनको भी हमारा हंस बन करके चलने से क्या फायदा है। आज चार बातें हम हंस के जीवन से निकालेंगे, ठीक है? ठीक है, पहली बात, हर चीज में मनुष्य देखता है मुझे क्या फायदा है, नहीं, पहला मनुष्य की नेचर क्या होती है, मुझे क्या फायदे की ओर उसकी बुद्धि जरूर जाती है, जाती है नहीं? हम सब बाबा के पास क्यों आए हैं? एक जन्म में थोड़ा सा कर लेने से 21 जन्म पद्मा पदम गुणम बन करके मिलेगा, ये हमें गारंटी है। इसलिए ना हम सब आए हैं। अगर बाबा कहेगा एक जन्म का एक जन्म में मिलेगा, आते थे कि आप सब पूरे लोभी हो, लोभी बेहद के लोभी नहीं, तब तो दौड़ दौड़ के आए हो। 21 जन्म भी पदम गुणा होकर के मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसे? मिलेगा तो धारणाओं से मिलेगा ना, नहीं मिलेगा तो धारणाओं से मिलेगा ना, नहीं तो कैसे मिलेगा? तो सबसे पहली बात, हमें सदा ये याद रहे कि बाबा ने हमें सबसे पहले बताया कि आप कौन हो। तो पहले पहले दिन जब आप सब लोग आए बाबा के घर में, कोई कहां कोई लाया होगा, कोई खुद आए होंगे, कोई एग्जीबिशन से आए होंगे, सबका तो अपना अपना अलग है ना बाबा के पास आने का अनुभव। कोई को साक्षात्कार भी हुआ होगा, कैसे कैसे करके भी कोई बाबा के घर में आए होंगे, लेकिन पहले दिन जब आप बाबा के घर में आए तो अपने को देह समझ के आए, और आपका पहले दिन का लेसन हुआ तो आपको क्या बताया गया? आप ये विनाशी देह नहीं, लेकिन इस देह में चमकता हुआ चैतन्य प्रकाशमय सितारा। तो आप एक प्रकाश हो, एक सितारा हो, आप चैतन्य हो। सिर्फ आप चैतन्य सितारा ही नहीं हो, आत्मा ही नहीं हो, लेकिन आप आत्मा शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, परमात्मा की डायरेक्ट संतान हो। ये तीन बातें आपको बताया गया। आप खाली आत्मा नहीं हो, आत्मा आत्मा तो हम भक्ति मार्ग में भी कहते थे, इसके अंदर कोई ज्योति है, कोई प्राण है जो है और फिर चला जाता है, पंछी उड़ जाता है, लेकिन क्या है मां? लेकिन हम क्या, आत्मा क्या चीज है और आत्मा क्यों शुद्ध है, क्यों पवित्र है, क्यों चमकती है, क्यों चेतन है? क्योंकि आत्मा इन पांच तत्वों से मिलकर के बनी नहीं है, इसलिए वो सदा प्रकाशमय है। क्योंकि पांच तत्वों के पार जब हम चले जाते हैं, जहां सूरज और चांद नहीं है वहां अंधकार भी नहीं, जहां सूरज और चांद है वहां दिन और रात है, अंधकार और प्रकाश है। तो इस दुनिया की कोई चीज प्रकाशमय है, कोई चीज अंधकारमय है, लेकिन जब हम इन पांच तत्वों से पार चले जाते हैं मन बुद्धि के द्वारा, तब आप देखेंगे उसके ऊपर में प्रकाश ही प्रकाश। चाहे आप सूक्ष्म लोक में चले जाइए, चाहे उसके बाद आप परलोक में चले जाइए, दोनों ही लोक हमारे प्रकाशमय है। क्यों? वो इन पांच तत्वों से पार उस प्रकाश या छठा तत्व जिसको बोला जाता है, आत्मा भी वहां की निवासी है, उसी की ही बनी हुई है, इसलिए आत्मा सदा प्रकाशमय है। तो जब मेरा स्वरूप प्रकाशमय है, ज्योति है, शुद्ध है, पवित्र है, तो बताइए मेरे अंदर, मतलब आत्मा के अंदर जो चीज होगी वो कैसी होगी, अर्थात उसका मन कैसा होगा, बुद्धि कैसी होगी, संस्कार कैसे होंगे? थोड़ी देर के लिए आप विचार कीजिए। क्यों? आत्मा चाहे शरीर में है, चाहे शरीर से बाहर है, अर्थात शरीर छोड़ करके 13 दिन के बाद जब वो गर्भ में जाती है, उतने दिन तो शरीर से बाहर रहती है ना, 13 दिन तक तो आत्मा गर्भ धारण नहीं करती है ना, 13 दिन के बाद वो गर्भ में प्रवेश होती है। तो वो शरीर में है या शरीर से बाहर है, जहां भी हो, लेकिन आत्मा चेतन ही है, प्रकाशमय ही है। तो जब मैं हर स्थिति में ही प्रकाशमय हूं, तो मेरे संकल्प अर्थात मन कैसा होना चाहिए? नेचुरल ही परमात्मा के संतान होने के कारण और इस धरा पर 2500 वर्ष पवित्र देवता जीवन मैंने बिताया है, जहां पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो देवी देवता धर्म विचरण करने वाले चैतन्य में मनुष्य रहते थे, जिनको आज हम देव कहते हैं। वहां देव शब्द होगा या नहीं होगा मैं नहीं, लेकिन दिव्यता तो थी ना उनके जीवन में, उस जीवन को याद करके हम देवी देवता कहते हैं। 2500 वर्ष मुझे आत्मा ने ही बिताया है, और 2500 वर्ष हमने उनकी पूजा की है, दुनिया ने नमन किया है। तो अगर मैं ऐसी एक दिव्य आत्मा हूं, बाबा ने मुझे मेरी पहचान दी है, और मुझे भी स्मृति आई। अगर मुझे ये स्मृति नहीं आती थी तो हम कभी भी बाबा का बन करके बच्चा बन करके चलते नहीं थे, यहाँ तक आते नहीं थे, ठीक नहीं? तो अर्थात हमें स्वच्छता से, पवित्रता से, दिव्यता से, प्रकाश से प्यार है, वो हमारी अपनी नेचुरल चीज है। तो जिसका इन चीजों से प्यार है तो इन सबसे ज्यादा स्वच्छ पवित्र क्या चीज है, गुण है। आप देखिए जब हम पहला संकल्प करते हैं कि मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं, तो पवित्रता अपने में एक गुण है और पवित्रता अपने में एक शक्ति भी। शुद्धता अपने में एक गुण है, शुद्धता अपने में शक्ति भी। तो जो स्वयं में गुण भी है और शक्ति भी है, अर्थात जब तक जो चीज आपके पास 50% रहती है वो गुण है, जब आप 50% से ऊपर उसको अपने में धारण कर लेते हैं वो शक्ति बनना शुरू हो जाती है। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल है, हम लोग पानी गर्म करते हैं डेगची के अंदर में, जब तक वो गर्म है उसको गर्म हो रहा होता है उसको गर्म पानी कहा जाता है। जब उसका भाप बनता है तो भाप अपने में एक शक्ति हो जाती है। देखिए आप पानी गर्म है उसके ऊपर ढकना ढका हुआ है, ढकना रहेगा पानी अंदर गर्म रहेगा, लेकिन जब वो ज्यादा गर्म हो जाएगा और भाप बनना शुरू होगा अपने आप ढकना उठना शुरू होता है, नहीं उठना शुरू होता है, और यहाँ तक इतना भी होगा कि ढकने को बाहर निकाल भी सकते, वो भाप में वो शक्ति है। इसी प्रकार जिन गुणों को सिर्फ हम अपने लिए ही रखते हैं, अपने सीमित परिवार के लिए रखते हैं या सीमित दायरे के लिए रखते हैं, अर्थात जैसे समझो प्रेम है, प्रेम एक गुण है, वो प्रेम हमारा हमारे आप में, कोई हमको इतनी सी बात भी जरा सा कुछ कह देवे जो हमको नहीं पसंद है, हमको अच्छा नहीं लगता, एकदम हमारा मन चेंज हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है। हमें अच्छी बात सुनने से ही प्रेम, बुरी बात सुनने से प्रेम नहीं। तो जब मैं हमेशा अपने लिए अच्छी बात सुनना चाहती हूँ या सुनना चाहता हूँ, तो आप सामने वाले को भी जो देखे उसको भी तो वही अच्छा लगता होगा ना, क्योंकि वो भी तो उसी शिव बाबा की संतान है ना, वो भी तो उसी परम धाम की निवासी आत्मा है ना, वो भी तो मन बुद्धि संस्कार सही चैतन्य है ना। हर आत्मा के अंदर कुछ ना कुछ तो गुण है ना, परमात्मा की रचना होने के कारण ज्ञान में आए या ना आवे जो भी होवे, लेकिन विश्व की कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जिसके अंदर में गुण ना हो। हाँ इतनी बात है, परसेंटेज हो सकती है, लेकिन बिल्कुल गुण किसी चैतन्य मनुष्य आत्मा में ना हो ये कभी हो ही नहीं सकता। हो सकता है बिना गुण के कोई आत्मा हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो जो हमारे को थ्योरी अच्छी तरह से मालूम है कि ये फाइनल थ्योरी है कि हर मनुष्य आत्मा में, चाहे वो ब्राह्मण परिवार की हो या ब्राह्मण परिवार की ना भी हो, हर मनुष्य आत्मा के अंदर गुण निहित ही है। तो अगर मैं आत्मा गुण संपन्न बनना चाहती हूँ तो मेरी नेचुरल दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? उसके गुण के ऊपर जानी चाहिए। लेकिन आज हम क्या कहते हैं, जैसी हमारी नेचर होती है वैसी हमारी दृष्टि होती है। कईयों की नेचर होती है बाह्य आकृति को देखने की, कैसा वस्त्र है, कैसा चेहरा है, कैसे बोलने की माना कला है किस तरीके से, या देखने का या सुनने का किस प्रकार का हाव भाव है। और कईयों को होता है कि उसके मस्तिष्क में प्रकृति में आत्मा को देखते हुए ये आत्मा किस प्रकार की नेचर की होगी, शांत है, गंभीर है, गुण संपन्न है, सरल है। जब हम व्यवहार में आते थे इन गुणों का हमको पता पड़ता है। तो हमारी नेचर नेचुरल ऐसी हो जाए, जैसे हंस नीर को नीर और क्षीर को क्षीर कर देता है, या कंकड़ को कंकड़ और हीरा मोती को मोती कर देता है, ऐसे नेचुरल हमारे को अगर ये स्मृति रहे कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ और इससे मैं डायरेक्ट बाबा की संतान हूँ, तो ऑटोमेटिकली हम जिसकी भ्रुकुटि के बीच में देखेंगे तो एक तो हमें भ्रुकुटि के बीच में देखने की नेचुरल नेचर बन जाएगी। जिस भाई बहनों को ये नेचर बन जाती है आप देखेंगे उनके अवगुण निकलते जाते हैं और औरों के उनके गुण सदा दिखाई देते हैं, उनके नेचुरल गुण ग्राही दृष्टि हो जाती है। जब तक अपने भ्रुकुटी में एक दूसरे को देखने का अभ्यास नहीं करा, अपने को स्थित होकर के भ्रुकुटी में रह करके कर्म योगी बनाया नहीं है, तब तक हमें गुण को अवगुणों को छोड़ने में मेहनत लगती है, औरों के गुणों को देखने में मेहनत लगती है। और इस मेहनत के कारण ही वर्षों वर्षों तक हमारे संस्कार चेंज नहीं होते। हमारे साथ अमृत वेले से लेकर के अगर हम देखें, प्यारा बाबा कितनी मेहनत हमारे साथ करता है। अमृत वेले खास हमें विशेष, सारे विश्व के बच्चों को छोड़ करके, भक्तों को छोड़ करके, साइंटिस्ट को छोड़ करके, किसी को भी छोड़ करके, सबको छोड़ करके 2 से 5 बजे तक का समय बाबा ने हम बच्चों के लिए रखा है। भगवान जो विश्व का रचयिता है, विश्व का पिता है, वो हम थोड़े से ब्राह्मणों के लिए अगर 24 घंटे से 3 घंटा खाली हमारे लिए ही है, उसमें कोई भक्त नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं, कोई रोगी नहीं, कोई नहीं, किसी के लिए वो बाबा का समय नहीं है। हम ब्राह्मणों के लिए समय कम भाग्य है, थोड़ा सोचो तो सही, विचार करो। और वो भी प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि सप्ताह में एक दिन रखा हो या मास में एक दिन रखा हो, प्रतिदिन आप उठो या ना उठो, आप याद करो या नहीं करो, आप समझो या नहीं समझो इस समय के महत्व को, लेकिन बाबा ने आपके लिए रखा हुआ। उसके बीच में से वो किसी साइंटिस्ट को, किसी रोगी को, किसी भक्त को समय देने वाला नहीं है। आप यूज नहीं करो, दूसरे तो बच्चे यूज करेंगे ना, करेंगे नहीं? तो आप अमृत वेले से अगर उठो और सोचो कि मेरा बाबा मुझे हंस बनाने के लिए, होली हंस बनाने के लिए 3 घंटा कम बात है। भक्ति में हमने सोचा था खाली हमें दर्शन ही हो जाए, कैसी आश रहती थी, मुझे याद है अच्छी तरह से। हम लोग बड़े छोटे छोटे थे, हमको तो समझ नहीं आता था ना क्या होता है क्या नहीं। हम सोचते थे सभी कोई कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, चलो चिंता नहीं, कृष्ण क्या है कहाँ है वो तो हमको नहीं मालूम था, लेकिन जिस जगह से कहीं से कृष्ण, अगर वृंदावन मथुरा जहाँ कहते ना कृष्ण विचरण करता था, वो कोई हमको जगह बता दे, उस जगह पर जो धूल के कण पड़े रहते हैं ना, उन कण में से भी कोई अगर मैं एक कण होंगी तो मेरा भाग्य होगा। अब कृष्ण क्या है, उसके चरण कहाँ पड़ते हैं, वो कुछ मालूम नहीं है। जब बाबा ने बताया कि देवों के चरण इस पतित भूमि पर नहीं पड़ते, देवता तो देवलोक में होते हैं, लेकिन परमात्मा इस पतित भूमि में आता है, कितनी वंडरफुल बात है। तो विचार करो, देवता ही इस पतित भूमि में नहीं आ सकते, हमारा बाबा परम धाम से पतित दुनिया में इस धरा पर विशेष सुबह को 1 घंटा हमारे से बात करेंगे। भगवान 1 घंटा प्रतिदिन आपसे बात करे, कभी कोई ने सोचा है? आज के तो लौकिक माँ बाप भी इतने बिजी रहते हैं, जो अपने बच्चे को प्रतिदिन 1 घंटा दे सके वो घरों में संभव नहीं। इसलिए आजकल बच्चे अपने में लोनलीनेस फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, मेरी मम्मी भी मेरी नहीं, मेरे पापा भी मेरे नहीं, वो चले जाते हैं, मुझे आया के पास छोड़ देते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं बच्चे। हम दुनिया में प्रवेश हो, दुनिया के कार्य में जाए, बाबा अमृत वेले से लेकर के फिर जब क्लास का, मुरली क्लास का समय होता है, 1 घंटा हमसे प्रतिदिन बात करता है। हमको चाहे मुरली क्लास में बॉडी यहाँ हो, माइंड बाहर चला जाता है, कभी कभी जाता है ना, जाता है ना, मुरली सुनते सुनते बुद्धि कभी किचन में, कभी रूम में, कभी मार्केट में, कभी ऑफिस में जाती है, नहीं जाती है, सच बोलना, जाता है ना। आप क्लासरूम को ही किचन बना देते हो, बेडरूम बना देते हो, ऑफिस बना देते हो, क्या क्या बना देते हो बताइए। क्लासरूम में अगर 50 भाई बहन बैठे हैं, वो इतना सारा बनाएंगे, वो क्लासरूम क्या हो जाएगा। अब और नहीं करना ऐसा काम कभी, ठीक है। मधुबन तो भुला देता है, मधुबन की भूमि में वो शक्ति है जो आपको डे डेट आपका शहर सब भुला देता है, लेकिन आपके सेंटरों में तो वो शक्ति नहीं है ना। क्यों, आप उस सेंटर के क्लासरूम को रोज क्या क्या बनाते हो, अब आइंदा से जा करके वो नहीं बनाना, क्लासरूम को क्लासरूम ही रहने देना, ठीक है? पक्का एक सोच के परिवर्तन करके जाना, क्लासरूम को दूसरा कोई सा रूम नहीं बनाना, बेडरूम नहीं बनाना, किचन रूम नहीं बनाना, ऑफिस रूम नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना। तो विचार करो, एक घंटा भगवान जिससे रोज बात करे, और उन बातों में भी आज दुनिया पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए, सकारात्मक चिंतन के लिए बुक्स खरीदती है। नेट को खोल करके देखते हैं कहाँ कुछ सकारात्मक चिंतन की कोई बात हो रही, उसके पास पॉजिटिव थिंक करने के लिए चीज ही नहीं है। एक घंटा प्रतिदिन बाबा हमको सकारात्मक चिंतन के लिए, विश्व के पढ़ाई के जितने विषय हैं, पॉलिटिकल साइंस होने दो, मेडिकल साइंस होने दो, जो कुछ भी जितनी भी पढ़ाई के सब्जेक्ट हैं, जो भी हो, एक घंटा मुरली में बाबा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी, जो कुछ भी है, एक घंटे में बाबा मुरली में सारे सब्जेक्ट हमको पढ़ा देता है। अगर एक किसी विषय पर हम पीएचडी करने जाते हैं, कितना पढ़ना पड़ता है बाबा के मुरली के एक एक शब्द के ऊपर में। अगर आप रिसर्च करें तो आपका वो मुरली, क्या मुरली की दो या चार लाइन भी आपके सारे दिन में पूरा नहीं होगा। अगले दिन फिर आपको बाबा एक घंटा बात करने के लिए तैयार है, फिर से बाबा आपके साथ एक घंटा बात करने के लिए तैयार है। प्रतिदिन बाबा थकता है, हम थकते हैं, देने वाला देता नहीं थकता, हम लेने वाले थक जाते। क्यों? या तो क्लास मिस कर देते हैं, नहीं तो क्लास में कभी कभी ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, हाँ, नवाज नहीं पढ़ना क्लास में, ब्राह्मण बन के बैठना, भाई बहन आकर के कहाँ कहाँ से थक के क्या क्या कारोबार। हम ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण कैसे बैठते हैं? चात्रक होकर के, आज बाबा क्या कह रहा है, आज मुझे क्या ले जाना है इस दुकान से, क्या खरीदारी करनी है, फिर क्या सारा दिन उसको बुद्धि में चिंतन करना है, फिर उसको बांटना है, डिलीवरी करनी है, औरों को देना है, अपने पास तक मुझे क्या रखने का है। तो नवाज नहीं पढ़ना क्लास में, ठीक है, ब्राह्मण ही बन करके क्लास में बैठना। तो जितने प्यार से हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो करके, कल्प में एक बार जो स्वप्न में भी नहीं था, हमारे स्वयं भगवान बैठ करके हमारे साथ बातचीत करता है, हमारे जैसा इस धरा पर भाग्यशाली और कौन होगा। और सिर्फ बातचीत नहीं करता है, लेकिन उसी बातचीत में उसी बातचीत के अंदर में, हमारे अंदर में कैसे आप समाज में औरों के साथ व्यवहार में आओ, कैसे आप अन्य वर्ग वालों की सेवा करो, कैसे आप अपने मन को परिवर्तन करो, कैसे आप अपने देहधारी संबंधियों से डिटैच हो, कैसे आप ट्रस्टी बनो, निमित्त बनो, और कैसे निमित्त बन करके उनका भी कल्याण करो, उनका भी कल्याण करो, उनको भी बाबा का बनाओ, और उनको भी बाबा का बना करके जो आपने पाया है उनको भी बाबा से किस जन्म के लिए वर्षा दिलाओ। कौन सी ऐसी बात है जो बाबा हमें मुरली में बात करने से लेकर के ऊपर उड़ने तक, कैसे आप एक सेकंड में इन पांच तत्वों को पार करके सूक्ष्म लोक और परम धाम की यात्रा करके आ जाते हो। आपके संकल्प को बाबा आपके हाथ में दे देता है। आप देखिए, अगर आप गहराई में जाकर के, आपको आत्मिक स्थिति में रह करके बाबा की मुरली सुनने का अभ्यास बना दिया होगा आपने, तो आप अपने संकल्प को सेकंड में रीड कर सकोगे, पढ़ सकोगे कि अभी मैंने क्या सोचा, ये मेरे इस समय सोचने का समय नहीं था, ये मुझे सोचना नहीं चाहिए था, मुझे इस समय इसकी आप जान सकोगे। नहीं तो कितना समय चला जाता है हमारा, हम क्या क्या सोचते हैं, जब चेतना आती है, अरे 10 मिनट हो गया, मैंने बाबा की मुरली की 10 लाइन ही मिस कर दी, मुझे पता भी नहीं चला बाबा ने, मैं कहीं और चली गई थी या चला गया था। तो अगर हम अपने आप को सदा ये समझेंगे कि बाबा भगवान कल्प में एक बार अपना परम धाम छोड़ करके मेरे खातिर मुझसे बात करने के लिए, और उसने मुझे श्रृंगार कर रहा है, तो आप देखिए आजकल ज्यादातर बीमारियां किससे होती हैं, इन्फेक्शन से होती हैं, होती नहीं है किसी का भी, किसी को खांसी जुकाम हो आपके सामने होगा, आपको बहुत जल्दी लग जाएगा, लग जाएगा नहीं, आपको वो लगा आपके पास बढ़ता चला जाएगा। इन्फेक्शन से जो रोग होता है वो बढ़ता भी बहुत जल्दी है और बहुत समय तक रह भी जाता है, कई बार निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ज्यादातर बीमारियां आजकल या तो इन्फेक्शन से होती हैं या मन के संकल्पों के द्वारा मानसिक रोग जिसको कहा जाता है वैसे होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आज दिन तक भी किसी ब्राह्मण ने किसी का गुण देखने की नेचर नहीं बनाई, अभी भी उसे किसी का अवगुण दिखाई देता है, माना आपको इन्फेक्शन हो गया, क्या हुआ? पहले तो आपकी आंखों का इन्फेक्शन हुआ, आपने देखा, फिर क्या हुआ? आपकी भावना को इन्फेक्शन हुआ, जो आपने देखा उसका अवगुण वह आपकी भावनाओं में चला गया, आपके चिंतन में चला गया। फिर उसके साथ अगर किसी ने कुछ सुना दिया, आपने हाँ में हाँ कर, आपकी वाणी में और आपके कान में वो इन्फेक्शन चला गया। तो एक बार में आपको आंख का रोग, कान का रोग, मन का रोग, मुख का रोग, इतने सारे रोगों को क्यों पालते हो आप अपने पास में? बाबा सुप्रीम सर्जन के पास आप आए हो, बाबा आपके तो 63 जन्मों के अवगुणों को, विकर्मों को विनाश करने के लिए आया है। युक्ति भी बता रहा है, शक्ति भी दे रहा है, खाली युक्ति नहीं बता रहा। अभी तक हमने भक्ति मार्ग में गुरुओं से या पौराणिक कथाओं से हमने क्या सुना? हमने यही सुना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नरक के द्वार हैं। आखिर फिर स्वर्ग का द्वार कौन है वो तो बताओ। वो किसी ने स्वर्ग का द्वार नहीं बताया और किसी ने ये भी नहीं बताया कि जो नरक के द्वार है आखिर इनसे छूटे कैसे हम, ना उनसे छूटना बताया ना स्वर्ग का द्वार किसी ने बताया। बाबा ने हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नरक के द्वार है, लेकिन कैसे नरक के द्वार है वो भी। हम माया की दुनिया में थे, हमें माया का भी ज्ञान नहीं था। बाबा के बाबा बाबा परमात्मा परमात्मा प्रभु ईश्वर भगवान अल्लाह खुदा ये सब बोलते थे, लेकिन भगवान का भी ज्ञान नहीं था हमारे पास। न माया का ज्ञान था न भगवान का ज्ञान था। बाबा ने दोनों ज्ञान देकर के हमें स्पष्ट कर दिया, नीर का नीर क्षीर का क्षीर कर दिया, ये अब नहीं चाहिए क्योंकि ये दुनिया जाने वाली है, ये अब चाहिए क्योंकि ये दुनिया आने वाली है। जैसे कोई कोई हमसे पूछता है, बहन जी आप लोग क्या सेवा करते हो भारत की? मैंने कहा क्या सेवा नहीं करते ये बताइए। बोले हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता, आपके आत्मा परमात्मा कहने से क्या विश्व की सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी? मैंने कहा आप बताइए कैसे समाधान होंगी? कांग्रेस समाधान करेगा, जनता समाधान करेगा, कौन समाधान करेगा? बोले आप किसी को भी वोट दे दीजिए, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में किसी को भी चुन लीजिए, कोई के पास है जो आपकी विश्व की समस्याओं का समाधान कर सकेगा? बोले नहीं है। फिर क्यों कहते हो आत्मा परमात्मा से नहीं होगा? मैंने कहा देखो आने वाली दुनिया, कोई भी चीज का बीज अंदर पड़ता है वो किसान को ही मालूम पड़ता है, बाहर वाले को नहीं मालूम पड़ता है। बाहर वाले भी सब कोई खेती को नहीं देखते, सब कोई गांव में। मुझे तो अच्छी तरह से याद है, मैं बाबा के पास जब आई, बाबा के घर में, मतलब जब बाबा के घर में मैं समर्पण होकर के आ गई, मैंने उससे पहले गांव नहीं देखे थे और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि कभी किसी के घरों के अंदर भी कुआं होता है। कुआं घर के अंदर, मैं सोचती थी कुआं एक पूरा एक क्या मोहल्ला जिसको बोलते शाही या मोहल्ला बोलते, उस मोहल्ले में एक कुआं होता है, जिसके घर में पानी नहीं होता वो उस कुएं से जाके, घर के अंदर कुआं होता है। जब मैंने सेंटर में देखा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा इस कुएं में क्या होता है, तुम लोग इससे पानी निकालते हो? पानी निकालते हुए मैंने किसी को नहीं देखा था। जब मैं बाबा के घर में, मैं तो बहुत बड़ी होकर बाबा के घर में आई, कोई छोटी बच्ची होकर के मैं बाबा के घर में नहीं आई, बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने कहा बाप रे, जिस भारत के अंदर घी दूध की नदियां बहती थी, उस भारत के अंदर घर के अंदर कुएं में पानी होता है, पानी भी नहीं होता है। गांव में पानी नहीं मिलता है, शहरों में पानी नहीं मिलता है, पानी के लिए लोग परेशान होते, मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता था। लेकिन अभी तो देखो पानी की कितनी प्रॉब्लम होती है। तो कहने का मतलब है कि बाबा ने हमें प्रैक्टिकल में कितना सुंदर हमारा जीवन बनाया है, हमारी दृष्टि को सब इन्फेक्शन से दूर रखा है। अगर आप भ्रुकुटी में आत्मा देख लो तो आपको स्मृति आ जाएगी, ये आत्मा भी परमात्मा की संतान है। हर आत्मा इस धरा पर जो पार्ट भी प्ले कर रही हो, लेकिन लास्ट में तो इसको चाहे योग के द्वारा, चाहे कर्म भोग के द्वारा या सजाओं के द्वारा, पावन बनकर के ही जाना है। और जब वह आत्मा पावन बनकर के परम धाम जाएगी तो ऊपर कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों? प्रकृति नहीं, अकेले आत्मा का कुछ परिवर्तन नहीं होता है, प्रकृति के साथ आत्मा का परिवर्तन होता है। पुरुष और प्रकृति मिलने से ही परिवर्तनशील बनते, वो बात दूसरी है। हमारा परिवर्तन उन्नति की ओर हो कि अवनति की ओर हो, आप देख लीजिए, जब भी पुरुष और प्रकृति मिले हैं तभी वो परिवर्तनशील बने। लेकिन जो महान परिवर्तन है, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो वो सर्वोत्तम परिवर्तन होता है, जिसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। जब उस परिवर्तन की बेला में हम आ गए, उस परिवर्तन को हमने स्वीकार कर लिया, अपने दिल से स्वीकार कर लिया ना कि हम देवता बनेंगे ही बनेंगे, स्वीकार कर लिया कि अभी सोच रहे हो? जो समझते हैं कि हम तो इसलिए एक वर्ष नियमों का पालन किया है कि हम एक बार देखे तो सही कि भगवान कैसे आता है और वो भूमि क्या है, माना मधुबन क्या चीज है, क्या होता है, हम खाली एक वर्ष नियमों को धारण किया इसलिए ऐसा कोई बैठे हुए हैं? यहाँ पर कोई बैठे हुए? इसके लिए आपको यहाँ तक भी आने की जरूरत नहीं है। अभी साइंस इतना डेवलप हो गया, आप घर के कंप्यूटर में बैठ करके ये देख सकते थे, लेकिन आप खुद चैतन्य में आए हो तो सिर्फ देखने के लिए नहीं आए हो, लेकिन उस दुनिया में जाने के लिए आए हो। उस दुनिया में जाने के लिए आए हो ना, जाएंगे ना। अभी मैं आपको एक बड़ी हंसी की प्रैक्टिकल बात, MBA क्लास अन्नामारी यूनिवर्सिटी और ब्रह्मा कुमारी इसके कोलैबोरेशन से जो हमारा कोर्स चल रहा है ना वैल्यू एजुकेशन का, उसका उसमें MBA भी लास्ट ईयर ऐड हुआ है उसके अंदर। तो बैरमपुर जहाँ से हम आए हैं वहाँ से 9 भाई बहने आए थे यहाँ MBA करने के लिए। उसमें एक इतना इनोसेंट, मैं तो देखती हूँ बच्चा भी कोई इतना इनोसेंट नहीं होता होगा जितना मैंने उसको देखा। वो वैसे इंजीनियर है और रेलवे में ड्राइवर है, ट्रेन का ड्राइवर है। वो कहता है जब मैं ट्रेन चलाता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा क्यों डर लगता है? कहता है गाड़ी का अगर हम ब्रेक लगाए भी देंगे, कोई चीज हमें सामने से दिखाई दे रही है, वो आधा किलोमीटर दूर इतना स्पीड होता है गाड़ी का, उसके ब्रेक को अगर हम लगाएंगे तो भी आधा किलोमीटर वो जाएगा तभी उसका ब्रेक लगेगा, उसने टाइम में क्या होगा हम भी नहीं जान सकते। इसलिए मैं जब मेरी ड्यूटी पूरी होती है, पहले तो कहता था भगवान आज की ड्यूटी ठीक ठाक पूरी पूरा, अभी कहता हूँ शिव बाबा आज की ड्यूटी पूरी बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मेरे कल्पना में कैसे गाड़ी चलाते चलाते, मुझे कोई जरूरत नहीं है MBA की, कैसे मेरे को आया कि मैं माउंट आबू, अपने आप ही कहते ट्रेन चला ही रहा हूँ। फिर मैं सोचा नहीं नहीं, मुझे माइंड को यहाँ रख के ट्रेन को चलाना है, मैं क्या क्या सोच रहा, अपने आप ही आया मुझे कभी माउंट आबू देखना है और मुझे MBA करना है। माउंट आबू से MBA का कोई संबंध नहीं। कहते दो संकल्प मेरे मन में थे, मुझे MBA करना है, जबकि MBA का मेरी नौकरी से कोई संबंध नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं, और मुझे माउंट आबू देखने का है। तो एक बार क्या हुआ, प्रोग्राम में जैसे लोग आते हैं ना, ऐसे वो भी प्रोग्राम में आया बाबा के घर में, तो दीवार के ऊपर में बैनर लगा हुआ, तो उसने देखा। और फिर जब उसने वो भरा फार्म भरा तो उसको पता चला इसकी क्लासेस माउंट आबू में होती है। तो कहता है दीदी मेरी तो दोनों आश पूरी हो गई, MBA की भी हो गई, माउंट आबू की पूरी हो गई। मैंने कहा आप माउंट आबू में जाके क्लास करेंगे या नहीं करेंगे? बोले नहीं नहीं मैं माउंट आबू में जाके MBA पढ़ूंगा। ठीक है चलो, सब कुछ हो गया। जब वो अपना अनुभव जाते समय हमने पूछा आप एक लाइन में अपना अनुभव सुना, तो उसमें एक डिप्टी कलेक्टर भी आया था, उसने एक बहुत अच्छी लाइन सुनाई। इसने क्या सुनाया, मेरी कल्पना में स्वर्ग था लेकिन मुझे मालूम नहीं था स्वर्ग की रूपरेखा, खाली कल्पना में स्वर्ग था लेकिन वो स्वर्ग की कोई रूपरेखा कहे तो आकृति आंक के दे दे तो मैं दे नहीं सकता था। लेकिन जब मैंने ब्रह्मा कुमारी इसका लिटरेचर देखा और ये म्यूजियम देखा, इसमें स्वर्ग की सीनरी देखी, तो मुझे लगा अच्छा ऐसा स्वर्ग होता है, ऐसा होता होगा, मैंने अपनी कल्पना में रख लिया। लेकिन स्वर्ग एक सोने की दुनिया है, गोल्डन दुनिया है, वो मुझे विश्वास हो गया। यहाँ का 7 दिन का कोर्स करके वो यहाँ पर आया तो मुझे विश्वास हो गया। कहता है जिस समय मैं आया, रेलवे स्टेशन पर उतरा और गाड़ी में बैठा, मुझे तो मालूम नहीं इन्होंने कहाँ जाना है, तो गाड़ी वहां से स्टेशन से निकल करके कहाँ से निकल के कहाँ जा रही है वो मुझे भी माने उसको तो मालूम नहीं पड़ेगा ना। हम शांतिवन से निकल करके मनमोहिनी वन जा रहे हैं, क्योंकि मनमोहिनी वन की रोड तो कोई शांतिवन से बाहर नहीं है, जो भी गाड़ी आएंगी इसके अंदर से होकर के ही गए। आप सब में से कौन कौन मनमोहिनी वन में ठहरे हैं, हाथ खड़ा करो। मनमोहिनी वन में कौन कौन ठहरे हैं? दादी आ गई।